खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो जी। सो कल हमने खुदा के कलाम में से इफिसियों पहला बाब उसकी पहली 14 आयात पर गौर की है, उसमें से चंद एक बातें सीखी हैं। तो सबको बंद कर दें, ये क्रॉस भी बंद कर दें, शुक्रिया जी, ताकि सबके पीछे जिस पर सलीब बनी हुई है वो भी बंद कर दे, ताकि ना वो सलीब वाली लाइट भी बंद हो जाएगी, शुक्रिया। तो हमने पहली 14 आयात को देखा जो कि बड़ा जबरदस्त तारफ खुदा के कलाम में से सीखा हमने, कलीदी बातों को, कलीदी क्या है जी, पैगामात को, और उसके बाद बहुत सी बातों को जो हमने मुआजना करते हुए देखा था जबूर एक के साथ, और फिर इफिसियों के पूरे खत का क्या है जी, वो खुलासा है। और यहां तक के जबूर 26 को भी हमने देखा था कि जबूर 26 में भी ये क्या है जी, नुक्ता पाया जाता है बैठना, चलना और खड़े होना। इसलिए आज हम खुदा के कलाम की तालीम में से क्या सीखेंगे जी, चांद बड़ी जबरदस्त बातें सीखेंगे जो बहुत अहम है, जो एक बाइबल टीचर के लिए बहुत ही लाजमी है कि बाइबल मुकद्दस के फहम के लिए तीन बुनियादी अकदाम को इस्तेमाल करना। ये तीन क्या है जी, वो फाउंडेशनल बातें हैं जो बहुत अहम है। और जब इसे हम देखते हैं तो पहली बात क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो उर्दू में उसको जो हमें सीखने को मिलता है क्या है जी, पढ़ना। पढ़ना, जब हम बाइबल मुकद्दस का कोई भी हिस्सा पढ़ते हैं तो उसमें से पहला सवाल उठता है कि मतन क्या है, मतन क्या है, मुआयना करना, मुशाहिदा करना, तवज्जो करना, ध्यान करना, ये पहला असूल है बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्से को पढ़ने के लिए, पुराने या नए अहदनामा में, अंबियाए असगर, अंबियाए अकबर, तौरात, अंजील या खतूत या तवारीखी कुतुब, इन सब के पीछे जो मेन कलीदी बात क्या है जी, किसी भी हिस्से को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए जी, पढ़कर मुशाहिदा करना चाहिए कि मतन क्या कहता है। और दूसरी बात क्या है जी, तशरीह, इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। यूसुफ का वाक्य हमें पुराने अहदनामा में याद है, जब उसने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद क्या करते हैं, उसे सजदा करते हैं, उसका मतन जो निकलता है कि इसके मायने क्या है, वो क्या है जी, तशरीह है कि मतन के मायने क्या है। कोई भी हवाला बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, जैसे यूसुफ की रोया, उसके बाद फिर दानियल की किताब में नबूकदनज़र बादशाह की रोया, उसका ख्वाब जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी, लाजमी था कि उसकी तशरीह की जाए। और तशरीह बहुत जरूरी है क्योंकि तशरीह से हमें क्या मिलती है जी, ताबीर मिलती है, तर्जमानी मिलती है, तफसीर मिलती है, तावील मिलती है कि जो कुछ कहा गया है उसके मायने क्या है, इसे क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। और तीसरी बात इतलाक आ जाती है कि मतन लोगों को कौन सा काम करने के लिए कहता है, जिसमें हम क्या सीखते हैं जी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कहा जाता है कि हुक्म का मानना, इतलाक करना या सादर किए गए हुक्म को पूरा करना कि उसकी वजह क्या थी, क्यों दिया गया। ये तीन बातें बहुत अहम हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। किसी भी जिंदगी के अहाता में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले हमें मुशाहदा करना होगा, और अगर आपके पास कोई आकर किसी की ऐब जो ही करता है तो लाजमी है कि उसका मुशाहदा करें, मुतालिया करें। अगर आपको कोई आकर बाइबल मुकद्दस की तालीम देता है तो बीडिया की कलीसिया के मुताबिक जो इमाम की किताब में लोग मिलते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पालूस के बारे में सुना हुआ था कि वो मुअल्लिम है, वो फरीसी है, वो खुदा के कलाम को बड़े ऐसे तरीके से जानता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका भी मुशाहिदा किया कि ये क्या जो हमें बता रहा है खुदा के कलाम के आईने में दुरुस्त भी है या नहीं। कभी भी किसी भी बाइबल टीचर के बयान को या उसकी तफसीलात को एक मिनट में कबूल ना कर ले, बल्कि उसका मुआयना, मुशाहिदा करें, क्योंकि 66 किताबों का मजमूआ आपको और मुझे इसीलिए दिया गया है कि हम उसे पढ़कर कहें कि भाई आपने जो कहा है इसका मतलब मतन क्या है। सो ये तीन चीजें हैं, इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्सा में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसलिए जब हम तीन चीजों को देखते हैं तो उसके बाद मैं आपको अपने छह दोस्तों से मुतारफ करवाना चाहता हूं। ये वो छह दोस्त हैं जो बड़े ही वफादार हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी धोखा नहीं देते, कभी भी तरफदारी नहीं करते, बल्कि हर वक्त यक वक्त क्या रहते हैं जी, मेरे मददगार रहते हैं, मेरे बहुत ईमानदार वफादार काबिल एतमाद दोस्त। इनको जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, उनके नाम क्या है, अभी अभी हमने सीखा उनके नाम क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जब हम देखते हैं हमें दो दोस्त मिलते हैं और वो दो दोस्त कौन से हैं, उसे उर्दू में कहते हैं कौन और क्या, इंग्लिश में उसे कहते हैं हु और व्हाट। जब हम इन पहले दो दोस्तों को देखते हैं तो हमें इनसे सीखने को क्या मिलता है, वो हमें सलाह क्या देते हैं कि पढ़ा जाए, मुशाहिदा किया जाए, तवज्जो की जाए, ध्यान की जाए, मालूमात ली जाए, ताकि हम समझ सके कि कौन और क्या का मतलब क्या है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्से को पढ़ते हैं, जैसे हमने इफिसियों पहली 14 आयात को पढ़ा, उसमें देखा कि मसीह में, खुदा बाप में, खुदा बेटे में और खुदा रूह में हमें क्या कुछ हासिल है, उसका क्या मतलब है और हम उसमें कौन हैं। और दूसरा दोस्त जो हमें मदद करता है इंटरप्रिटेशन में, यानी के तशरीह करने में, समझने में, ताबीरी करने में, तफसीर करने में, तर्जमानी करने में, वो क्या है जी, वेयर व्हेन एंड वेयर, कब और कहां। किसी का कत्ल हो जाए तो उसके लिए तीन असूल इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी के घर चोरी हो जाए तो चोरी को सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया जाता है जी, मुशाहदा किया जाता है, उसकी सारी हालत को देखा जाता है कि कहां से चोर जा सकता था, कहां से निकला होगा, कहां पर उसके फिंगरप्रिंट होंगे, क्या क्या उसने किया, क्या क्या उसने चुराया, और उसमें क्या आ जाता है जी, मुशाहदा आ जाता है। जब मुशाहदा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो इस बात का तयन करते हैं कि इसका हम नतीजा या निचोड़ क्या निकालेंगे, कि कब और कहां और इसके मायने क्या है, जो हतमी तौर पर हम फैसला कर सकते हैं कि इनके पीछे कितने लोगों का हाथ था, उनके पीछे उनका हदफ क्या था, उनके पीछे उनकी सोच क्या थी, और बंदा नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ इसकी ताबीर की जा सकती है। जैसे यूसुफ कैद खाना में है और नान पास दो जो है जी वो उसके साथ कहती हैं, वो आकर कहते हैं एक ने ख्वाब देखा, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि अंगूरों का गुच्छा वगैरह वगैरह, और दूसरे ने कहा कि मैंने रोटी पकड़ी हुई है, और उन दोनों के ख्वाबों की वो ताबीर बड़े जबरदस्त तरीके से मुशाहिदा करके जब उनकी ताबीर करता है तो उसका नतीजा ठीक वैसे ही निकलता है कि तू तो सरफराज किया जाएगा, तू फरौन का प्याला पकड़ कर पिएगा और तू अपने उस मकाम पर बहाल किया जाएगा, लेकिन तुझे क्या किया जाएगा जी, कत्ल किया जाएगा। सो मुशाहिदा, तशरीह और अतलाक, फिर है जी नतीजा निकलता है, जो हमारे आखिरी दो दोस्त हैं, क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ। सो ये वो छह दोस्त हैं जिनको आप अपने दोस्त बना सकते हैं, बाइबल मुकद्दस की किसी भी शख्सियत से, किसी भी वाक्या से, किसी भी तल्लुक को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं जी, नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि पढ़ने से हमें क्या इसका मतलब मिला है और अब हम इसके नतीजे में इसको किस तरह अपनी जिंदगी में अतलाक कर सकते हैं। इसलिए ये छह दोस्त बहुत अहम हैं। सो हम पौलुस रसूल का खत पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे पास आज क्या है जी, बहुत कम वक्त है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा सीखें। अगर आप तस्वीर बनाना चाहते हैं तो इसकी बना लें, क्योंकि आगे मैं चाहता हूं कि जब हम अगले हिस्से में जाएं तो हम सीखें, क्योंकि आज हम पौलुस रसूल की दुआ पर गौर करेंगे, पौलुस रसूल की दुआ पर गौर करेंगे। और दुआ पर गौर करने से पहले मेरे साथ निकालें इफिसियों का खत, उसका जब हम पहला बाप उसकी 15वीं आयत को देखते हैं, जो के पौलुस की दुआ है, और इस दुआ को जब हम देखते हैं बड़ी जबरदस्त दुआ है, और जब हम इस खत का मुशायदा करते हैं, पढ़ते हैं, तवज्जो करते हैं, इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सवाल उठता है कि ये खत क्यों इतना बाबरकत है, और हम सवाल उठाते हैं कि ये खत कहां से लिखा गया। अगर आपसे कोई सवाल कलीसिया में करता है कि भाई साहब पौलुस रसूल ने ये खत कहां से लिखा, तो हम पर लाजमी है कि उनको सिर्फ कहने वाले ना बने बल्कि सबूत के साथ बताने वाले बने कि उसने ये खत कहां से लिखा। तो आपसे सवाल है कि उसने ये खत कहां से लिखा? कैदखाना से। जबरदस्त जवाब है, कैदखाना से। अब इसके जवाब के लिए क्या है जी, हमें इसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि इसमें जाना होगा, सीखना होगा कि वाकया ही जो कुछ कहा गया उसके मायने यही है। आए मेरे साथ देखिए इफिसियों 3 बाब उसकी पहली आयत। 3 बाब उसकी पहली आयत, जब कोई हमसे कहता है, हम किसी को कहते हैं कि भाई ये खत उसने जेल खाना से लिखा है, जब वो कैदी था, जब दो रूमी सिपाहियों के साथ उसको क्या है जी चेन जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो उसके साथ रहते थे, और पौलुस रसूल को क्या है जी ये खत उसने कैद खाना से लिखा, तो सबूत मिलता है इफिसियों 3 बाब उसकी पहली आयत से। वो कहता है इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह का कैदी हूं। उसके बाद अगला सबूत हमें मिलता है इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत में, वो क्या कहता है पैस मैं जो खुदावन में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। और फिर आगे जाकर जब हम देखते हैं छठे बाब की जब हम 20वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर भी वो क्या कहता है, वो कहता है जिसलिए जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दो गवाहों की गवाही क्या मानी जाती है जी, सच्ची और सरहक मानी जाती है। हमें 3 गवाह मिल गए कि उसने क्या है, 3 बाब में कहा मैं कैदी हूं, 4 बाब में उसने कहा मैं कैदी हूं, 6 बाब में उसने कहा कि मैं वो मसीह का एलची हूं जो जंजीरों से जकड़ा हुआ। तो जब हम किसी भी खत का मुताला करें, मुशायदा बहुत जरूरी है, उसका तशरीह करना तब ही दुरुस्त होगा। अगर हमारा मुशायदा दुरुस्त होगा तो हमारी तफसीर दुरुस्त होगी, और अगर हमारी तफसीर दुरुस्त होगी तो हमारा अतलाक भी दुरुस्त होगा। जैसे कल ढोलक वाली मिसाल थी, बेकायदा बजाएंगे तो किसी को समझ या किसी को लुत्फ नहीं मिलेगा, बाकायदा ढोलक बजाएंगे सबक के साथ तो सुनने वाला कहेगा कि ये चलंतर चल रहा है, ये जी ये है जी कथक चल रहा है, या कोई क्लासिकल चल रहा है, या डिस्को, या ढोल है, या धमाल है, या कोई और सबक बजाया जा रहा है, तीन ताल है, या कैरवा है, या फिर क्या है जी घोड़ा चाल चल रही है। मुर्दा जानवर की खल अगर बोलकर दुरुस्त सबक दे सकती है, तो हम पर बहुत ज्यादा खुदावन की तवक्को है कि उसके पैगाम को दुरुस्तगी से लोगों तक लेकर जाए। इसलिए पौलुस का मुताला कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक झलक पौलुस की जिंदगी पर देख लें कि पौलुस रसूल कौन था। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, वो एक सरगर्म क्या था जी, फरीसी था। इमाल 22वां बाप उसकी 3 आए, 23वां बाप उसकी 6 आए, 26वां बाप उसकी 5 आए, दूसरा ग्रंथियों 22वां बाप 11 बाप उसकी 22 आए, गलतियों 1 बाप उसकी 14 आए, और फिलिपियों 3 बाप उसकी 5 आए के मुताबिक वो क्या था है जी, मैं अपने खानदान के तलक से क्या था जी, सरगर्म फरीसी था। वो एक रोमी भी था। इमाल 16 बाप उसकी 37, 22 से 37 आयत के मुताबिक और 25 से आयत के मुताबिक, 28 आयत के मुताबिक क्या था जी, रूमी शहर का क्या था जी, शहरी था। इसलिए उसने कहा कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी, और रोमियों के लिए क्या हूं जी, रोमी। इब्तदाई कलीसिया को सताने वाला या दुख देने वाला भी उसे कहा गया है। इमाम 7 बाब उसकी 8 आयत से 58 आयत तक, 58 आयत और 8 बाब उसकी पहली आयत से, फिर 3 आयत और फिर 9 बाब की पहली आयत, और फिर 4 बाब से आगे शुरू होता है 22वें बाब तक, वो खुद इकरार करता है कि मैं कलीसिया का सताने वाला था। सौल की तब्दीली को देखते हैं कि सौल किस तरह पालूस बना, इमाल नौ बाब में उसका जिक्र मिलता है, फिर उसके बाद उसका जिक्र हमें 22वें बाब में मिलता है, फिर उसका जिक्र 26वें बाब में मिलता है, पहला ग्रंथियों 9 बाब में मिलता है, और उसके बाद पहला ग्रंथियों 15 बाब और गलतियों 1:13 में, और पहला तमूथियस 1 बाब उसकी 12 और 13 आयत में मिलता है कि सौल किस तरह पालूस बना। उसके बाद उसके बुलावे को देखते हैं कि रसूल होने के लिए बुलाया गया, इमाल 22वां बाब, उसके बाद फिर 21वां बाब, इमाल 22वां बाब उसकी 14 से 21, और 26वां बाब उसकी 16 से 18, और रूमियों 1 बाब उसकी 1, पहला करंथियों 1 बाब उसकी 1 आयत, और पहला करंथियों 9 बाब उसकी 1 आयत, और तो पहला करंथियों 2 बाब उसकी 15 आयत से आगे वो चलता है, और गलतियों 1:1 में और 15 और 16 आयत में, और इफिसियों 1 में और कुलुसियों में, ये सारे हवाला जात क्या है जी, उसे बयान करते हैं, उसकी रिसालत को, उसके बुलावे को, और इन खतूत के शुरुआत ही में पढ़ते हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह का बंदा और उसका रसूल होने के लिए बुलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं पालूस रसूल की पैदाइश अंदाजे तौर पर, और कह सकते हैं कि जी जो हमें तमाम तारीखी लवाजमात या डेटा मिलता है उसके मुताबिक 10 ईस्वी के इर्द गिर्द की हुई। वो यहूदी था, वो फरीसी था, और उसका बाप भी फरीसी था। इमाल 23वां बाप उसकी 6 आए। सौल उसका अब्रानी नाम था, और पालूस तो उसका और पालूस उसका रूमी नाम था। इमाल 8 बाब उसकी 1 आयत, 9 बाब उसकी 1 आयत, और 9 बाब उसकी 13 आयत के मुताबिक क्या है जी, ये हमें मालूमात मिलती है। और वो किस कबीले से था जी, वो बिन्यामीन के कबीले में से था। ये बिन्यामीनी कबीला जब देखते हैं पुराने अहदनामा का बादशाह जो सौल बादशाह था, वो किस कबीले से था जी, बिन्यामीन कबीले से। नए अहदनामा के सौल का जो हम रवैया और तरीकाकार देखते हैं कि वो अपने आप को बादशाह समझता और कलीसिया को सताता है, वो किस कबीले से था जी, बिन्यामीनी कबीले से। रोमियो 11 बाब उसकी 1 आयत, और फिलिपियो 3 बाब उसकी 5 आयत कि मैं बिन्यामीनी कबीले से तल्लक रखता हूँ। वो किलिकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा था। इमाल 11 बाब उसकी 9 आयत, 21वां बाब उसकी 39वीं आयत, 22वां बाब उसकी 3 आयत, और यहां पर उसके बारे में हमें जिक्र मिलता है कि यरूशलम के सबसे मशहूर स्कूल में उसने यानी कि गमलियल के कदमों में बैठकर तालीम पाई थी। इमाम 22वां बाब उसकी 3, 26वां बाब उसकी 4 बयान करती है, और ये क्या है, लाजमी है जब किसी बंदे की जिंदगी का मुतालिया करें तो हमें शुरू से शुरू करने की जरूरत है। वो कौन था, वो कहाँ से आया, उसका खानदान, वो कहाँ पर रहता था, कहाँ से उसने तालीम पाई, और उसके जिंदगी के तर्ज हयात के हताफ क्या थे कि वो किन के बायस जिंदगी बसर करता था। तो ये है पालूस रसूल के तल्लक से थोड़ी सी मालूमात, और हम इस पर सीखते हैं कि वो कौन था। इसलिए उसने जब ये खत लिखा तो उसने कैदखाना में से ये खत लिखा, और कलीसिया को ये खत उसने लिखा है रूह और सच्चाई से। उसने ये नहीं कहा कि होए होए मैं मर गया, मेरे हालात बुरे हैं, नहीं। उसने कैदखाना से जब ये खत लिखा तो हम शुरू करेंगे जी आप वो ईसियों के खाके पर जाए जी, जो नवा खाका मैंने आपको भेजा है जी, जिसमें लिखा हुआ था न्यू वन इफिसस की कलीसिया के खत का खाका। हम शुरुआत करेंगे मुशायदा और क्या है जी तफसीर, और उसके बाद उसका नतीजा। दुरुस्त मुशाहिदा हमें दुरुस्त तफसीर की तरफ, और दुरुस्त तफसीर हमें क्या है जी सही इतलाक की तरफ लेकर जाएगी कि हमने क्या करना है जी, इतलाक करना है। सो हम शुरू करेंगे जी जबूर की किताब में से। सो जब तक भाई इसको शुरू करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब हम जबूर 22 को 23 को और 24 को देखते हैं तो हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 22, 23 और 24 जबूर लिखने का मकसद क्या था। जब हम जबूर 22 का मुतालिया करते हैं तो जबूर 22 क्या कर रहा है? यीशु मसीह की नबूवत कर रहा है कि वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देगा जी, अपनी जान देगा, जो यूहन्ना 10 बाब उसकी 11 में सबूत मिलता है। और जब हम जबूर 23 को देखते हैं तो जबूर 23 हमें बयान करता है बड़ा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। जबूर 23 की 6 आयात है और 6 आयात को जब हम देखते हैं, मैंने इस पर एक किताब लिखना शुरू की हुई है, उस किताब में जो मेरा मकसद है वो क्या है जी कि इस 6 आयात में खुदावंद खुदा की जात के वो 15 नाम जो अब्रानी नाम इन 6 आयात में पाए जाते हैं उनको बयान किया जाए कि वो कौन है। और जबूर 23 में क्या लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और जबूर 23 का चरवाहा क्या है जी, वो चरवाहा है जो अपने लोगों की देखभाल करता है, जिसका हमें सबूत मिलता है अब्रानियों 13 बाब उसकी 20 आयत में। और जबूर 24 का सरदार गल्लाबान चरवाहा कौन है जी, यीशु मसीह है जो अपनी भेड़ों के लिए दोबारा फिर वापस आने वाला है कि हर एक को उनके काम के मुआवजे क्या दे जी, अजर दे। पहला पत्रस 5 उसकी 4 में लिखा है जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो हर एक को उनके कामों के मुआवजे क्या देगा जी, बदला देगा और वो सेहरा देगा जो नाम उछाने वाला सेहरा। तो ये बहुत जरूरी है जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हम उसको कितना ज्यादा भी तफसील से बयान कर सकते हैं और किसी के सीखने सिखाने के तलक से कि जबूर 22 का चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, जबूर 23 का चरवाहा हर पल अपने लोगों के साथ उनकी देखभाल करता है, उनके दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है, उनके सर पर तेल मलता है, उसकी भलाई और खुशहाली हमेशा साथ रहती है, उसके आशा और उसके लाठे से उसे तसल्ली है, वो अपनी भेड़ों को बहाव करता है, वो उनकी जरूरतों को मुहैया करता है और उसका नाम क्या है जी, यहोवा राखा। ये इब्रानी नाम है जिसमें कहा गया है जी लॉर्ड इज माय शेपर्ड, खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद के लिए क्या लिखा गया है जी, यहोवा का लफ्ज, और चौपान के लिए अब्रानी लफ्ज क्या है, राहा। और जब चौपान का नाम लिया जाता है तो उसमें पूरी कहानी आती है इब्राहिम और इसहाक की कि इस पहाड़ पर मुहैया किया गया उसका नाम मैं क्या लूंगा, अब से यहोवा यरी जो अपने लोगों के लिए मुहैया करता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है, शायद हमें तो इसलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे इफिसियों के खत का मुतालिया, हम जरा जल्दी जल्दी से इसमें से गुजरेंगे। हमने देखा था कल रात रूहानी बरकत के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारे लिए रूहानी माल मता क्या है। सो आए जरा इस पर गौर करें कि खुदा बाप का काम क्या है जी, इलेक्शन है। जब हम पहली 4 और 5 और 6 आयत को देखते हैं तो उसमें खुदा ने हमारे लिए क्या किया है जी, उसमें खुदा ने हमारे लिए क्या किया है और हमें यह सवाल उठाना पड़ता है कि मैं मसीह में कौन हूं, क्या हूं और किसका हूं और मेरे लिए क्या कुछ दस्तियाब है। सो आए जरा देखिए पहला नुक्ता, बाप क्या हमारे लिए करता है, उसने इलेक्शन किया। 3 आयत में वो हमें क्या कहता है, मुबारक या मुकद्दस कहता है। 4 आयत में वो क्या हमें कहता है, चुने हुए लोग। 5 आयत में वो क्या कहता है, पेशतर से मुकरर हुए। 5 आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है, ले पालक बेटे। 6 आयत में वो कहता है, महबूब उसके प्यारे, बिलव्ड ऑफ क्राइस्ट। और जबूर 127 में क्या लिखा है, वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, आप और मैं उसका महबूब हूं। गजलों गजलात को बहुत दफा बहुत से लोग नहीं पढ़ते, अगर उसे सही मुशाहिदा के साथ पढ़ा जाए और उसकी दुरुस्त तफसीर की जाए तो उसका अतलाक क्या निकलेगा, वो लव लेटर है जो खुदा ने सुलेमान को कहा के लेख, और जो तस्वीर क्या है जी, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लिख रहा है कि तू मेरे लिए कैसी अजीज है। वो खत हमें लिखा गया है, वो तमाम गजलात हमें लिखी गई हैं कि हम जाने कि हम उसकी नजर में उसके कैसे दिलावड़ हैं। ताने जो लगता किसी ना किसी को इश्क होया होगा पहली दफा, सारे होता क्योंकि बंद इश्क हो जाता, जो इश्क हो जाता बंदा की करता दीवाना हो जाता। फिर बंदा अपना कहता कि जी बुले शाह भी गाँदा, तो बंदा हीर भी गाँदा, तो रामजा भी गाँदा, तो सब कुछ गाँदा, तो गा गा के बंदा रमला कमला हो जाता। और वो क्या है जी, हमारी इंसानी मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत में गजलों गजलात लिखी गई कि ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी अजीज, तेरी हालत, तेरी शनाखत, तू कौन है मेरे लिए। सो इसलिए जब हम आगे देखते हैं तो अगले हिस्से में हमें क्या मिलता है जी, अगले हिस्से में सातवीं आयत का पहला हिस्सा कहता है जी छुड़ाए हुए लोग, और सातवीं आयत का दूसरा हिस्सा माफ किए गए लोग, और इफिसियों 1:8-9 कहती है रोशन ख्याल यानी कि हमें अदराक और फहम उसने बख्शा है, जो कहता है कि उस पर हिरद की हिकमत की दनाई की सलामती की और हर तरह की रूह क्या करेगी जी सकूनत करेगी। और 11वीं आयत में उसने हमें अपनी मीरास बना लिया, हम उसकी मीरास हैं। जैसे खुदा अपने कलाम की हिफाजत करता है, वो अपने बंदों बंदियों की हिफाजत करता है। और पुराने अहदनामों में तो खुदा इस तरह कहता है कि मैं अपने लोगों को क्या कहता हूँ, मेरी आंख की पुतली है। और उसके बाद फिर 12वीं आयत को देखते हैं कि मसीह की सताइश, मसीह के जलाल की सताइश का बायस हूं। और ये क्या है जी, पाप के बाद बेटे का काम है कि वो हमें छुटकारे में क्या करता है, माफ करता है, इल्म देता है, मीरास बनाता है, ताकि हम उसके साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर खुदा बाप की सताइश करने वाले बने और कहें कि बाप तेरा शुक्र हो। सो ये चंद एक बातें थी जो हमने कल सीखी। और उसके बाद फिर खुदा पाक रूह का काम हमने देखा, उसका काम क्या है जी, तहफ्फुज़। इफिसियों 1:13 में हमें जिक्र मिलता है कि हम मोहर शुदा हैं, यीशु मसीह की कब्र पर जब पहरे बिठाए गए उस पर रोमियों ने अपनी मोहर लगा दी, और वो मोहर तस्दीक थी कि कोई उस मौजूदा हुकूमत की मुखालफत में कुछ भी कर नहीं सकता, अगर करेगा तो वो क्या है जी, गर्दारी होगी, सर क्या होगा जी, सरकशी होगी, और उसकी सजा क्या होगी जी, मौत होगी। खुदा ने कहा कि तुम रोमी अपने आप को समझते क्या हो, मैं जो दुनिया का बादशाह हूं अपने बेटे को खाकसार करूंगा, तुम उसे कब्र में रखोगे, उस पर पहरे बिठाओगे, अपनी फौज के सबसे उम्दा सिपाही खड़े करोगे जो कभी भी हारे नहीं है, और उस पर अपनी मोहर करके कहोगे कि इन पे इस कब्र पर हमारा इख्तियार है। और खुदा का फरिश्ता आया और कब्र खुल गई, पत्थर हट गया, मोहर टूट गई, और कैदी आगे, और जो पत्थर हटाने का मकसद ये था कि ये मकसद नहीं था कि यीशु ने कब्र से बाहर निकलना था, मकसद उसके पीछे था ये कि दुनिया अंदर आकर देखे उसकी कब्र खाली है। मोहरों को तोड़ने वाला, हम मोहर शुदा लोग हैं, हम पर मोहर किसकी की गई है जी, रूहुल कुदस की। और यीशु मसीह ने नए अहदनामा में कहा है कि कोई जिनको खुदा ने मेरे हाथ में दिया है मुझसे छीन नहीं सकता। रूहुल कुदस की मोहर हम पर हुई है। और उसके बाद 14वीं आयत बयान करती है बयाना शुदा है, बयाना दे दिया गया है, और बयाने में उसने अपने बेटे का खून, अपने बेटे का सब कुछ दे दिया है। और ये बयाना इतना अजीम है, और उसकी जो मुकम्मल अदायगी होगी वो कैसी है, यूहन्ना 14 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं तुम भी होगे, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह को गए हुए 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, अगर पत्रस के खत के मुताबिक देखें उसका कलाम कहता है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है, अगर 1000 साल को एक दिन से मिलाए तो भी 2 दिन हुए हैं, और अगर एक दिन को 1000 साल से मिलाए तो 2000 साल से क्या है जी ज्यादा अरसा हो चुका है यीशु मसीह को गए हुए। और अब सवाल यह है कि उसने बयाने में हमें यह कुछ दे دے دیا ہے, جب مکمل ادائیگی کرے گا, جب سب کچھ مکمل طور پر ہمیں دکھائے گا دے گا, وہ کیسا ہوگا؟ وہ بیان سے باہر ہے اور کلمے اور کتابیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائیں گے جب تک روبرو اس جیسے اس کی مانت اس کی حضوری میں نہ ہوں گے. ہم اپنی میراث کو دیکھیں گے کہ وہ کیسی عظیم ہے. ہللویہ. یہ بھی پہلی 13-14 آیات کا خلاصہ جو ہم نے کل سیکھا. آئے ہم دیکھیں گے بڑی قدرت کے بارے میں, بڑی قدرت کے بارے میں, گریٹ پاور. پالوس رسول کی پہلی دعا, اس خط میں پالوس رسول کی دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, افسیوں 1 باب اس کی 15 آیت سے اور افسیوں 3 باب اس کی 14 آیت سے. یہ دو دعائیں ہیں جو بڑی زبردست قوت اور قدرت سے بھری ہوئی ہیں. اور جب ہم پالوس رسول کی پہلی دعا کو دیکھتے ہیں تو وہ دعا کیا ہے جی؟ ادراک اور فہم اور روشن خیالی کے لیے ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پالوس رسول کی دعا سے شروع کیا جائے. پدرویان میں لکھا ہے, اس سبب سے میں بھی, I'm reading the prayer of Paul in Ephesians 1:15-23, the great power that is available to us in Christ Jesus, the dunamis, the power of God, the Holy Spirit that dwells in us. اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے. یہاں پر اردو کی ایک چھوٹی سی کیا ہے جی, کمزوری ہے. یہاں پر جو لفظ پر کا استعمال کیا گیا ہے انگلش میں, اس کو کیا کیا گیا ہے جی, یسوع مسیح میں ہے. اس لیے اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو یسوع مسیح جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے, حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال اور باپ جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفا کی روح بخشے. بڑی زبردست دعا ہے. اور وہ کہتا ہے تمہارے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. جب دعا کو وہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی بات 15 آیت میں کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں کی تعریف کرتا ہے کہ میں نے تمہارے ایمان کا حال سنا ہے, تمہارا ایمان دیکھا ہے, تمہارا ایمان ظاہر ہوا ہے. جل جیسے کل پاسٹر ڈینیل بتا رہا تھا کہ اگر ہم 5 باب کو زندگی کو گزاریں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ یسوع مسیح کا خط ہے, یہ یسوع مسیح کی انجیل ہے, یہ یسوع مسیح کے گواہ ہیں. پالوس رسول نے افسس کے کلیسیا کو دیکھا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے ایمان کے بارے میں سنا, تمہارے بارے میں شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کا حال تمام دوسرے مقدسین پر ظاہر ہے. اس خط میں بہت کچھ ہے, اگر ہم لفظ بہ لفظ جائیں تو تقریباً 3 سال لگیں گے. اور میں نے اس خط پر پہلے ٹیچ کیا تھا آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے اور اس پر تقریباً 450 پیغام ابھی بھی ہماری ویب سائٹ پر پڑے ہیں جب میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا. یہ بڑا زبردست خط ہے. سو وہ بیان کرتا ہے, دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں. سوال, کیا دل کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ یہ کس دل کی بات کر رہا ہے؟ اس دل کی بات کر رہا ہے یا کسی اور دل کی بات کر رہا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سوچ ہے, میڈیکل طور پر جو دل کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کھادیا استعمال کیا ہے, جسے کہتے ہیں دھڑکن میں دھڑکنے والا وہ چھوٹا سا جسم کا گوشت کا حصہ جو دھڑکتا ہے بم 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 بم. جب وہ یہاں پر کہتا ہے تمہارے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سوچنے کا جو معیار ہے اس کو وہ ادراک حاصل ہو کہ تم کون ہو. اور یسوع مسیح نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے جب شاگرد اس کے پاس آ کر کہتے تھے کہ یسوع مسیح فقی فریسی ہم کو کہتے ہیں کہ تم ہاتھ دھو کر نہیں کھاتے پیتے اس لیے ناپاک ہو, تو خداوند یسوع مسیح نے جواب میں ان کو کیا کہا تھا کہ جو کچھ آدمی کھاتا ہے اس سے नापाक नहीं होता, जो कुछ आदमी के अंदर जाता है उससे वो नापाक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ वो खाता है वो मसबला में निकल जाता है, लेकिन जो कुछ आदमी के अंदर से, जो कुछ आदमी के दिल से निकलता है, और दिल से क्या निकलता है, बुरी सोचे, ख्याल, तकबर, लड़ाइयां, झगड़े। तो यहां पर जो हमें सीखने को मिलता है वो है यूनानी अतबार से जो बात कर रहा है वो क्या है जी, तुम्हारे सोचने का वो निजाम जिसे क्या कहते हैं, राइट लोब, जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन जाकर सुकून करती है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, उसे मेडिकल जुबान में क्या कहते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब वो है जहां पर हम तमाम मालूमात जो दिन भर में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसे देखते हैं और कबूल करते हैं, और लेफ्ट लोब में जाकर मेडिकल के मुताबिक वो क्या करती है, ठहरती है, और फिर प्रोसेस होकर जैसे है जी वो गुजर कर जिन बातों को हम हतमी तौर पर यकीनी मान लेते हैं वो हमारे राइट लोब में, यानी के हमारे वो जहन, हमारी वो रूह में दर्ज हो जाती हैं, और वो अकीदा, नजरिया या ईमान या क्या है जी, हमारी पुख्तगी का बायस बनती हैं। पालूस रसूल कहता है कि जो मालूमात मैं तुमको दे रहा हूँ, खुदावंद खुदा अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिलों की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो। यहां पर जो लफ्ज मालूम का इस्तेमाल किया है यूनानी जबान में, मालूमात के लिए चार लफ्ज इस्तेमाल किए गया है, नोसिस, एपिनोसिस, ओइडा और गनोसिस। यहां पर जो मालूमात के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये क्या है जी, एपिनोसिस नहीं है कि सिर्फ मालूमात इकट्ठी की गई है खबर पढ़ने से या टीवी देखने से या सुनने से, ये क्या है जी, ओइडा है। ओइडा वो मालूमात है यानी कि जिसे ईमान से मंजूर कर लिया हो, कबूल कर लिया हो और वो क्या है जी, सच बन जाए। वो पौलुस रसूल कहता है मेरी दुआ है जो मालूमात तुमने अभी अभी पढ़ी है कि तुम्हें खुदा की तरफ से क्या हासिल है, तुम्हें बाप के बेटे की तरफ से क्या हासिल है, तुम्हें रूह कुद्दस में क्या कुछ हासिल है, मेरी दुआ है कि ये सब मालूमात तुम्हारे अंदर दर्ज बनकर क्या हो जाएगी, वो बुनियादी हिस्सा बन जाए कि तुम इसे सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि हकीकी सच्चाई समझ कर जिंदगी बसर करो। और कहता है कि उस मेराज को समझो और वो मेराज कैसी है, उसको जानो जिसकी दौलत क्या है, मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और उसके बाद वो कहता है और हम ईमान वाले, ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। ये बेहद कुदरत क्या है जी, जब हम दूसरा ग्रंथियों चार बाप उसकी सात आयत को पढ़ते हैं, ये हद से ज्यादा कुवत कौन सी है, जब हम देखें दूसरा ग्रंथियों चार बाप उसकी चार आयत, यहां पर जो लफ्ज कुदरत का इस्तेमाल किया गया है नए अहदनामा में ये खासकर रूह कुद्दस के लिए है, इसको क्या कहते हैं, दुनमास। दूलास जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो खादम के लिए, डीकन के लिए या खिदमत करने वाले के लिए, दुनमास क्या है जिससे हमें लफ्ज मिलता है डायनामिक या डायनामाइट, एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन होता है किसी जगह पर बम फटता है तो उस बम में क्या होती है, बड़ी कुदरत होती है, वो लोहे को, सीमेंट को, पत्थर को, हर एक चीज को रेजा रेजा कर देती है। वो कहता है कि दुनमास, द पावर ऑफ गॉड लिव्स इन यू, खुदा की कुदरत तुम में रहती है। वो कहता है दूसरा ग्रंथियों चार बाब, चार बाप उसकी सातवीं आयत को देते हैं तो वो कहता है लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत दुनमास हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। और खुदा की कुदरत कब जाहर होती है जी, हम हर तरह की मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना अमीन नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते, गिर तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु मसीह की मौत लिए फिरते हैं ताकि मसीह की जिंदगी हमारे वसीला से जाहिर हो, क्योंकि हम जो हम जीते हैं, हम जितने जिए मसीह की खातर, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी बदनों में जाहिर हो। बस मौत तो हम पर असर करती है और जिंदगी तुम में, वो उनको लिखते हुए कहता है ये कुदरत बड़ी ही नयाब है और इसी बात को वो इफ्सियों जब हम पहले बाप में पढ़ते हैं तो वो जाकर उनको कहता है ये हद से ज्यादा कुदरत उसकी कुवत की तासीर के मुआफिक कितने हैं जी तुम में है। और इसी कुवत ने क्या किया, यीशु मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान था, वो चाहता तो अपनी जमीनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, वो चाहता था तो एक मिनट में सलीब से उतर आ सकता था, वो चाहता था तो गतसमनी बाग में 12 तुम्मन के फरिश्तों को बुला सकता था, वो चाहता था जब उसको क्या किया है जी धुतकारा गया, जब उसके मुंह पर मारा गया, जब उसको थिक किया गया, वो सब कुछ कर सकता था लेकिन उसने अपनी कुदरत का इस्तेमाल नहीं किया। और यीशु मसीह के ईमान को देखते हैं कि उसके बाप पर उसका कैसा ईमान है, जब यहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाया। आपको याद दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह ने अपने आप को मुर्दों में से खुद नहीं जलाया था, यीशु मसीह के मुर्दों में जी उठने के पीछे किसकी कुदरत सरगर्मे अमल थी, खुदा के पाक रूह की कुदरत थी। सलीब पर जब उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं तो मुकम्मल अपना इख्तियार उसे दे दिया। कब्र में 3 दिन 3 रात रखने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह का मुकम्मल एतकाद किस पर था, अपने बाप पर और उसकी रूह की कुदरत पर जिसने क्या है जी बड़े अजीब अजीब काम किए और उसने कब्र में अपना एतकाद अपने बाप पर अपनी रूह पर रखा, अपनी अल्लूहियत को इस्तेमाल नहीं किया। यह है खुदावंद यीशु मसीह की फरोतनी कि वो जो इफ़सियों फिलिप्पियों 2 बाब में पढ़ते हैं बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था खुदा को कब्जा में रखने की कुछ चीज ना चाहना, अपने आप को खाक सर कर दिया बल्कि ऐसा के खादम की सूरत इख्तियार की कि सलीबी मौत इख्तियार करे और खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से ज्यादा आला नाम है। और यहां पर पौलुस रसूल कहता है और क्या लिखा है जो उसने मसीह में की जो कुदरत तुम्हें दी वही मसीह में उसने कुदरत को इस्तेमाल किया कि उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ अपने आसमानी मुकामों पर बिठाया। यीशु मसीह आसमान पर बैठा हुआ है खुदा कादर मुतलक की दाहिनी तरफ और क्या लिखा है और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा। यीशु मसीह क्या है जी हीरो है इस दुनिया का भी और आसमानी शहर का भी और वो हम जैसे 0 को लेता है और उसके साथ 100 को मिटाकर हीरो का नाम लगा देता है। हमारी जो कुछ पहचान नहीं कुछ कुवत नहीं कुछ ताकत नहीं कोई मेयार नहीं कोई पहचान नहीं वो हमें अपनी पहचान देकर कहता है मैं 0 को हीरो बनाने की कुदरत रखता हूं और अगर कोई मेरे पीछे ना चले तो मैं फिरौन को उसके तकब्बर की खाक चटाना भी जानता हूं। जब यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को जब मुर्दों में से जलाया गया तो हर तरह की हुकूमत इख्तियार कुदरत रियासत और हर नाम से सब नामों से ज्यादा उसे क्या दिया जी अफजल नाम दिया, तो ये बात जो हो रही है रियासत हुकूमत कुवत और हुकूमतें ये दरअसल रूमियों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उन तमाम गिराए हुए फरिश्तों के इख्तियार की क्योंकि आगे चलकर 2 बाब में वो कहेगा कि तुम मुर्दा थे और हवा की अमलदारी के हाकम के इख्तियार में थे, जब यीशु को खुदा ने मुर्दों में से जलाया तो उसके जूबे उसके बंधन उसकी हुकूमत उसकी रियासत उसकी तमाम हाकमियत को उसने क्या कर दिया जी 0 कर दिया ताकि तुम उसमें क्या हो जाओ जी हीरो हो जाओ। और 16वीं आयत से 23वीं आयत में वो ईमानदारों के लिए दुआ करता है कि तुम इस कुदरत से वाकिफ हो और ये है जी वो ग्रेट पावर खुदा का पाक रूह। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 4 गुनाह है जो रूह कुदस के खिलाफ किए जाते हैं, 4 गुनाह है जो रूह कुदस के खिलाफ किए जाते हैं, उनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। पहला जब हनानिया और सफीरा का वाक्य पढ़ते हैं कहां पर मिलता है ईमान 5 बाब में जी पांच बाप में तो वहां पर क्या है जी, हननिया और सफीरा ने, बहुत से लोग उनको कहते हैं जी वो ईमानदार नहीं थे, वो ईमानदार थे, वो कलीसिया का हिस्सा थे, वो क्या है जी अपनी शुक्रगुजारी लेकर आए हैं, वो यीशु मसीह के उस ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने ईमान लाया है, जो 3000 की जमात में से बाद में लाने वाले ईमान के क्या है जी पैरोकार हैं। सो वो ईमानदार थे, इसलिए ईमानदार क्या कर सकता है जी, रूहुल कुद्दस से झूठ बोल सकता है। पत्रस ने इसने कहा, क्या कहा कि तुमने जमीन को बेचकर जो तुम्हारी नहीं थी, जब तक तुम्हारी थी तुमने उसे दे दिया, तो तब वो तुम्हारी नहीं रही, तो तुमने क्या बोला जी, खुदा से, उसके रसूलों से और खुदा के रूह से झूठ बोला। सो ईमानदार होते हुए हम क्या कर सकते हैं जो गलती है, रूहुल कुद्दस से झूठ बोलना। उसके बाद दूसरा गुनाह हम ईमानदार होते हुए क्या कर सकते हैं, रूहुल कुद्दस को बुझाना, रूहुल कुद्दस को बुझाना। इफिसियों 4 बाब उसकी जब हम 30वीं आयत में देखते हैं, तो पौलुस रसूल ईमानदारों से, इफिसस की कलीसिया से आज हम सब से बात करते हुए 30वीं आयत के मुताबिक क्या कहता है, वो कहता है और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए क्या हुई है जी, मोहर हुई है। ईमानदार होते हुए हम रूह को रंजीदा कर सकते हैं, और ये कब होता है, जब हम रूह की नाफरमानी करते हैं। काफी लोग यहां पर शादीशुदा हैं, बच्चे भी होंगे, बीवी भी है, अमीर है एक ही या पांच पांच ने, एक खुदा के खादम है वो बहुत दफा कहते हैं जी मेरी एक ही बीवी तो 3 बच्चे, तो इसलिए वो बड़े मजाक के साथ ये बात कह देते हैं। तो आपके बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, तो जब आपकी बीवी या बच्चे आपकी नाफरमानी करते हैं तो क्या होता है, रूह रंजीदा होता है ना। सादा सी बात है, जब हम खुदा के पाक रूह की नाफरमानी करके अपनी मनमानी करते हैं, नाफरमानी और मनमानी में क्या है जी, छोटा सा फर्क है। नाफरमानी और मनमानी में क्या है जी, छोटा सा फर्क है। नाफरमानी में हम क्या करते हैं जी, अपनी मनमानी करते हैं कि खुद परस्ती करें, नाफरमानी में और हम क्या करते हैं जी, खुद परस्त हो जाते हैं, और फरमा बरदारी में हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी और खुद परस्ती का इनकार करके खुदा की खुदी को और खुदा की खुद गर्ज मोहब्बत को नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत को सॉरी क्या करते हैं जी, कबूल कर लेते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। सो इसलिए दूसरा गुनाह क्या है जी, ईमानदार रूह को रंजीदा कर सकते हैं। तीसरा गुनाह, ईमानदार रूह को बुझा देते हैं। पहला तसलीकियों जब हम उसका 5वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल, पौलुस रसूल क्या करता है जी, 17 हुक्म देता है। 17 हुक्म, हम बहुत दफा जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो सिर्फ कहते हैं ये 10 हुक्म या नहीं, नए अहदनामा में 170 हुक्म मिलते हैं, जो हुक्म क्या है जी, एक दूसरे के तलक से है, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे का हौसला बनो, एक दूसरे के लिए तसल्ली बनो, एक दूसरे के लिए ये करो, एक दूसरे के लिए वो करो, और ये 170 अहकाम हमें नए अहकामा में मिलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड को जब हम पढ़ते हैं उर्दू में तर्जमा, हुक्मियाना रवैया, और यहां पर वो इस्तेमाल करता है हुक्माना रवैया। पहला तसलीकियों 5 बाब जब हम उसकी 18वीं आयत को गालबन पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, पहला तसलीकियों 5 बाब 19 आयत, शुक्रिया, थैंक यू जी। 19वीं आयत में क्या लिखा है जी, रूह को ना बुझाओ। ये छोटी सी आयत है जी, रूह को ना बुझाओ, लेकिन हुक्म है। जब हम कहते हैं कि ये ना करो, तो ये हुक्म है, दरख्वास्त नहीं, ये किसी से क्या है जी, इल्तिजा नहीं, ये किसी को नसीहत नहीं, क्या है जी, ये हुक्म है। इसलिए एक और बड़ा जबरदस्त तरीका है बाइबल मुकद्दस का मुशाहिदा करने के लिए, जब भी आप किसी को पढ़ें तो उसमें देखें कि उसने किस रवैये में बात की है, مثال کے طور پر رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتا ہے, پس میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. وہاں پر پادریس رسول کیا کہتا ہے جی, درخواست کرتا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 23 آیت سے, جو بات مجھے پہنچی میں نے تم کو بھی پہنچا دی, جس رات یسوع پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے, میری یادگیری میں یہی کیا کرو, یہ حکم ہے یہ درخواست نہیں ہے. یسوع مسیح نے 3 دفعہ یہ حکم دیا, پرانے نئے عہد نامہ میں, متی کی جھیل میں, متس کی جھیل میں, لوکا کی جھیل میں, اور اس کے بعد پالوس رسول اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہے میری یادگاری میں یہ ساکرامنٹ پورا کیا کرو جب تک میں نہ آؤں. سو اس لیے یہ 3 گناہ ہے جو ایماندار کرتے ہیں, اور 1 گناہ ہے جو غیر ایماندار روح القدس کے خلاف کرتا ہے, وہ ناقابل معافی ہے. اور وہ کیا ہے جی, خدا کے پاک روح کے خلاف کفر بکنا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے خلاف بری بات کہے گا وہ تو اس جہاں میں معاف کیا جائے گا, لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے گا وہ نہ اس جہاں میں نہ آنے والے جہاں میں معاف کیا جائے گا. اس کی سادہ تفسیر کیا ہے, جو روح القدس کا انکار کر کے خوشخبری کے پن کا پیغام کو رد کر دیتا ہے, بائبل اسے اسے کیا کہتی ہے, روح القدس کے خلاف کفر, اس کی نافرمانی. کیونکہ یہ صرف غیر ایماندار کر سکتے ہیں, ایماندار جھوٹ بول سکتے ہیں, روح کو بجھا سکتے ہیں, روح کو کیا کر سکتے ہیں جی, رنجیدہ کر سکتے ہیں. اس لیے آئیں ہم یہاں پر رکیں گے, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پاسٹر دانیل آئے اور وہ اگلی کلاس کو کرے, اور پھر ہم ایسے ہی چلتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ بہت زیادہ ورق ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ سب کو یہ سٹ باک سٹینڈ کا مل گیا ہوگا, اس کے پیچھے بڑا زبردست خلاصہ ہے بائبل مقدس میں سے نجات کا پیغام. اگر کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں, تو آپ اس کو سادہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا, کیسے تم نجات پا سکتے ہو, تمہاری نجات کیسے ختمی ہو سکتی ہے. ایک گورا تھا, جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر میکڈونلڈ کے سامنے باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کا کاروبار سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ بڑا ہی نا امید بیٹھا ہوا تھا. میں نے لوگوں کو دیکھا آتے جاتے, کوئی اسے $5 دے رہا ہے, کوئی $1 دے رہا ہے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ یہ برگر لے لو, کوئی اسے کہہ رہا ہے یہ چپس آلو والی چپس لے لو, وہ لیتا گیا بیٹھا رہا. میں کیمپ پر جا رہا تھا ٹیچ کرنے کے لیے, تو ہم وہاں پر رکے اور سارے بھاگ کر کھانے کو چلے گئے, اور میں وہاں پر دیکھ رہا تھا اس بندے کا, اور خدا کے پاک روح نے کہا کہ سب اسے کھانے والی چیزیں دے رہے ہیں, کوئی اسے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں نہیں بتا رہا. $5-10 دینے سے اس کی روزمرہ کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی, لیکن اس کی ابدی ضرورت کبھی بھی پوری نہ ہوگی. اس لیے تو جا. میں گیا, میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا, اس نے کہا میرا نام لیری ہے. بھائی کیا ہوا, اس نے کہا تم پہلا بندہ ہو جس نے بیٹھ کر میرا حال پوچھا کہ دراصل مجھے ہوا کیا ہے. میں کہاں یہاں پر کیسے پہنچ گیا, اس نے کہا میں کاروباری بندہ تھا, سب کچھ تھا, سب کچھ برباد ہو گیا, اور اب میں کاروں سے روڈ پر آ گیا ہوں اور یہاں پر بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی کو درست کر سکوں. میں نے اسے کہا کہ تم بہت بابرکت ہو, اس نے کہا کیسے, میرے حالات بڑے خراب ہیں, کہ خدا نے مجھے پاکستان سے یہاں پر بھیجا ہے تمہارے لیے. تمہیں پتا ہے پاکستان کہاں پر ہے, اس نے کہا جی خبروں میں سنا ہے بڑا خطرناک علاقہ ہے. میں نے کہا خدا نے مجھے پاکستان سے سات سمندر پار سے بھیجا ہے لیری تیرے لیے, کہ آج تجھے بچاؤں, کہ ایک ہے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے, وہ تجھ سے پیار کرتا ہے, اس نے تیرے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. تو نے سنا ہے یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہے, اس نے کہا ہاں سنا ہے, کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں نے کہا لیری کیا تو ایمان رکھتا ہے, उसने कहा मैंने सुना हुआ है, लोगों ने मुझे बताया है कि हो सकता है कि हमेशा की जिंदगी मिलेगी, मैं उसके लिए मुझे बहुत नेकियां करनी होगी, मैं नेक बंदा नहीं हूं, मैं कोई प्रीस्ट या काहिन नहीं हूं, मैं इस जिंदगी के पास नहीं आ सकता। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, जितनों ने तुझे बताया है वो गलत बताया है। क्या लिखा है? जो कोई उस पर ईमान लाएगा, यू आर इन दोज हु बिलीव इन हिज सन। मैंने उसे कहा डू यू वॉन्ट टू बिलीव इन जीसस, क्या तू यीशु पर ईमान लाना चाहता है? उसने कहा मैं ईमान ले आऊंगा लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे हमेशा जिंदगी मिलेगी। मैंने कहा कि मैं तुमको अभी बताता हूं, यूहन्ना 3:16 कहती है ईमान लाएगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा हुआ है कि ये बातें तुम्हें मैंने इसलिए लिखी कि जो खुदावन यीशु के बेटे, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी उसकी है। मैंने कहा दिस इज द प्रेजेंट टेंस फॉर यू, यू आर द वन हु possess the eternal life by putting your faith in Jesus Christ. Larry, do you want to believe in him? कि क्या तू यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहता है लैरी? और लैरी ने कहा कि ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि पहले ने मुझे बताया कि इसी घड़ी मैं निजात का वारिस बन सकता हूं। और आप इस हवाले को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5:13 बड़ा जबरदस्त सच है कि सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा गया कि हो सकता है कि जिंदगी मिलेगी, हो सकता है कि मैं उम्मीद कर सकता हूं, हो सकता है कि मेरी जिंदगी की तब्दीली का मेरा ईमान मुझे इस लायक ना ठहराए। लेकिन पहला यूहन्ना 5:13 में क्या लिखा है? मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी तुम्हें मालूम हो, दुनमास सॉरी कोइडा मालूम हो, हतमी सच ना काबले तब्दील हकीकत, तुमको मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। ये नहीं कि मिलेगी कि उम्मीद करेंगे और ये 10 महीनों की है। और लैरी ने उस फुटपाथ पर जहां पर वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था कि कोई $1 दे कोई $5 दे, मैंने उसे डॉलर नहीं बल्कि उसके साथ क्या किया जो पतरस और यूहन्ना ने उस अपाहज के साथ किया कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं बल्कि तुझे यीशु मसीह की खुशखबरी देता हूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। और लैरी ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और इसमें क्या है जी, जो आपको दिया गया है जी सादा सा आला कि आप किसी को भी हमेशा की जिंदगी का पैगाम दे सकते हैं। आए खुदा के सुन चुके हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तरीफ हो, सब कुछ हो, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी कुदरत के लिए, पादूस रसूल के लिए, पाक रूह के लिए, तेरे तहरीरी कलाम के लिए, सबको बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। अगली क्लास में खड़े होना तैयार हो। हालेलुया।